हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम प्रिया सिंह है और आज हम डिस्कस करेंगे आपकी किताब सामाजिक विज्ञान का चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है राजस्थान के गौरव। और बच्चों, हमने इस चैप्टर के सेकंड टॉपिक यानी जिस टॉपिक का नाम है लोक देवता, वो स्टार्ट किया था। हमने समझा था कि लोक देवता का मतलब क्या होता है, कैसे लोक देवता और देवता में हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, और इसके बाद हमने देखा था कि तेजा जी को हम लोक देवता क्यों मानते हैं। और इसी सीरीज में आज हम कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि राजस्थान के सेकंड नंबर पर लोक देवता कौन है। तो चलिए फटाफट से आप अपनी बुक का पेज नंबर 70 ओपन करिए, और इसमें दिया गया सेकंड नंबर का पॉइंट जिस पे लिखा है गोगा जी, इस पर ध्यान दीजिए। तो इसके अंतर्गत लिखा है कि गोगा दे चौहान ददेरवा _ चुरू के निवासी थे। इनके पिता का नाम जेवर तथा माता का नाम बाइल था। बाइल गोरखनाथ की भक्त थी। बाइल की सेवा से प्रसन्न होकर गोरखनाथ ने गूगल धूप से बना सर्प दिया और कहा कि इसे दूध में घोलकर पी जाना। परिणाम स्वरूप गोगादे का जन्म हुआ। इनका विवाह पाबूजी के बड़े भाई बुड़ौजी की पुत्री केमल दे से करना चाहते थे, लेकिन बूढ़ो जी यह नहीं चाहते थे। एक दिन गोगा जी सर्प का रूप धारण कर फूलों के बीच बैठ गए। केमल दे फूल लेने लगी, तब सांप से उसे डस दिया। अंत में गोगा जी के अभिमंत्रित धागे को केमल दे के बांधने से वह ठीक हो गई और दोनों का विवाह हो गया। गोगा जी ने दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह से युद्ध किया। इस युद्ध में गोगा जी के दो मौसेरे भाई अर्जन व सर्जन भी बादशाह की ओर से लड़ रहे थे। वे दोनों मारे गए। अपने घर पर यह बात गोगा ने अपनी माता को बताई। वह बहुत नाराज हुई और गोगा को घर से चले जाने और मुंह नहीं दिखाने को कहा। गोगा को यह बहुत बुरा लगा और जीवित समाधि ले ली। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की नवमी को गोगा नवमी के रूप में मनाई जाती है तथा वीर पुरुष के रूप में इनकी पूजा होती है। नौ गांठ वाली गोगा राखी हल चलाते समय हल व हाली दोनों के बांधी जाती है। ददेरवा, राजगढ़, चुरू, रतनगढ़ आदि क्षेत्रों में गोगा जी के मेले लगते हैं। गोगा जी के थान को गोगा मेड़ी कहा जाता है, जो इंद्रमानगढ़ किले में स्थित है। गोगा जी के भक्त हाथों में ऊंचे निशान _ झंडे लिए हुए, ढोल नगाड़े झांझर आदि बजाते हुए नृत्य करते हैं। रात्रि जागरण भी किया जाता है गोगा मेड़ी के मेले में। राजस्थान से बाहर के लोग भी आते हैं। तो गोगा जी जो कि एक लोक देवता हैं, वो चौहान डिसेंडेंट से माने जाते हैं, यानी कि पृथ्वीराज चौहान के कुल से ये बिलोंग करते हैं। जो इनके पिताजी थे, यानी इनके फादर का नाम जेवर था और इनकी मदर का नाम बाइल था। बच्चों, इनके माता पिता को कोई चाइल्ड नहीं हो रही थी और किसी किसी ने ऐसा बोल दिया था कि शायद उनके पेरेंट्स इनफर्टाइल हैं, और इसीलिए जब उन लोगों ने एक संत को दिखाया जिनका नाम गोरखनाथ था, तो उन्होंने बाइल को यानी कि गोगा जी की मम्मी को एक ऐसा चीज दिया जो कि गूगल धूप से बना हुआ था और इसको दूध में मिला करके पीना था, जिसको पीने के बाद गोगा जी का जन्म हुआ। और इसी के नाम पर यानी गूगल धूप के नाम पर ही गोगा जी का नामकरण किया गया। एक बार जब ये जवान हो गए थे और इनकी शादी की बात चल रही थी, जिससे इनका मन था शादी करने का, उनके बड़े भाई का उस लड़की से शादी करवाने का बिल्कुल मन नहीं था, और इसीलिए गोगा जी ने एक बार सांप का रूप धारण कर लिया, क्योंकि ये लोक देवता थे और लोक देवता के लिए ऐसा करना तो एक आम बात है। तो गोगा जी ने सांप का रूप धारण करके बगीचे में बैठ गए, वही बगीचे में जहां पर उनकी पसंद की लड़की जिसका नाम केमल दे था वो फूल लेने जाती थी। और केमल दे ने जब फूल तोड़ा तो गोगा जी ने सांप बन करके उनको डस लिया। तब केमल दे के घर वाले परेशान हो गए, और बाद में जब गोगा जी ने उनको बांधने के लिए कोई दवाई दी तब जाकर के वो ठीक हुई, और अंत में गोगा जी का विवाह उस लड़की केमल दे से हो गया। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि गोगा जी जो थे वो सांप का रूप धारण कर सकते थे। एक बार गोगा जी ने दिल्ली सल्तनत के जो राजा थे यानी दिल्ली के सुल्तान थे जिनका नाम था फिरोज शाह, उनसे युद्ध किया। और गोगा जी के जो दो मौसेरे भाई थे अर्जन और सर्जन, वो बादशाह की तरफ से लड़ रहे थे और ये दोनों भाई मारे गए। जब गोगा जी ने इस इंसिडेंस को अपनी मम्मी से शेयर किया तो उनकी मम्मी बहुत एंग्री हुई और उन्होंने कहा कि तुम घर से निकल जाओ, कभी भी मुझे अपना मुंह मत दिखाना। तब गोगा जी ने इस बात को दिल पर ले लिया क्योंकि उनको बहुत कष्ट हुआ। और जब वो घर से निकल गए तो उन्होंने जीवित समाधि ले ली। और उस दिन के बाद से हमारे हिंदू कैलेंडर में एक भाद्रपद के कृष्ण पक्ष आता है। तो भाद्रपद के जो कृष्ण पक्ष आता है उसमें नवमी के दिन इनकी नवमी मनाई गई, यानी उस दिन को गोगा के नाम से जाना गया और उस दिन इनकी पूजा होने लगी। इसके साथ साथ बच्चों, जब हम हल देखा होगा हम सभी ने, जब हल चलाते हैं वहां के लोग, तो उन लोगों ने नौ गांठ वाली गोगा राखी बांधना शुरू कर दिया अपने हलों में। इसके अलावा कुछ ऐसी जगहें हैं जैसे ददेरवा, राजगढ़, चुनू, रतनगढ़, इन सब में गोगा जी के नाम के बहुत सारे मेले भी लगते हैं और गोगा जी के स्थान को गोगा मेड़ी कहा जाता है, यानी जहाँ पर गोगा जी के पूजा होती है। और ये इंद्रमानगढ़ के किले में लोकेटेड है। तो क्या आप सभी में कोई भी इंद्रमानगढ़ का किला गया है बच्चों? और अगर आप गए हैं तो क्या आपने कभी गोगा मेड़ी की प्लेस विजिट की है? अगर नहीं भी की है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अभी कर लीजिएगा, क्योंकि ये एक प्रसिद्ध लोक देवता हैं। तो ये हुआ हमारा डिस्कशन खत्म गोगा जी पर। अगले जो लोक देवता हैं उनके बारे में हमें पेज नंबर 71 पर लिखा हुआ मिलता है, जिनका नाम है पाबू जी। इनके बारे में लिखा है कि पाबू जी राठौर कोल्हूगढ़ के रहने वाले थे। चांदा और डामा नामक दो वीर इनके प्रिय सहयोगी थे। जब पाबूजी युवा हुए तो अमरकोट के सोढ़ा राड़ा के यहाँ से सगाई का नारियल आया। सगाई तय तो हो गई, पाबू ने देवल नामक एक चारण देवी को बहन बना रखा था। देवल के पास एक बहुत सुंदर और सर्वगुण संपन्न घोड़ी थी, जिसका नाम केसरी कालवे था। देवल अपनी गायों की रखवाली इस घोड़ी से करती थी। इस घोड़ी पर जायल के जिंदराव खींची की आंख थी। वह इसे प्राप्त करना चाहता था। जिंदराव और पाबू में किसी बात को लेकर मन मुटाव भी था। विवाह के अवसर पर पाबू जी ने देवल देवी से यह घोड़ी मांगी। देवल ने जिंदराव की बात बताई, तब पाबू ने कहा कि आवश्यकता पड़ी तो अपना कार्य बीच में छोड़कर आ जाऊंगा। देवल ने घोड़ी दे दी। बारात अमरकोट पहुंची। जिंदराव ने मौका देखा और देवल देवी की गायों को लेकर भागा। बाबूजी जब शादी के फेरे ले रहे थे, तब देवल के समाचार बाबू को मिले कि जिंदराव उसकी गायें लेकर भाग गया है। समाचार मिलते ही अपने वचन के अनुसार शादी के फेरे को बीच में ही छोड़कर केसर कालवी घोड़े पर बैठकर जिंदराव का पीछा किया। गायों को तो छुड़ा दिया, लेकिन बाबूजी खेत पर रह गए। अर्धविवाहित सोढ़ी बाबूजी के साथ सती हो गई। इनकी यह यश गाथा बाबूजी की फड़ में संकलित है, जिसका वाचन बड़ा लोकप्रिय है। बाबूजी की लोक देवता के रूप में पूजा की जाती है। तो बच्चों, अभी हमने जिनके बारे में रीड किया उनका नाम बाबूजी है, और रीड करने से हमें इतना तो समझ में आ गया कि राजस्थान के जो जन नायक रहे हैं या लोक देवता रहे हैं, वो लॉयल रहे हैं, ट्रस्टवर्दी रहे हैं और अपनी प्रॉमिसेस को रखने वाले रहे हैं। यानी कि वो वैसे नहीं थे जैसे कि इतिहास में कई लोग मिलते हैं जिनकी गद्दारी की वजह से देश का नाम कलंकित होता है, और शायद इन्हीं सारे फीचर्स की वजह से इन लोगों का नाम आज लोक देवताओं की लिस्ट में सम्मिलित किया गया है। तो बच्चों, बाबूजी जो थे वो राठौड़ परिवार से थे और कोलूगढ़ के रहने वाले थे। इनके दो बेस्ट फ्रेंड्स थे जिनका नाम था चांदा और डामा। जब बाबूजी अपने यूथ स्टेज पर थे तो उनके सोढ़ा राड़ा के यहाँ सगाई फिक्स हुई, और इसके अतिरिक्त बाबूजी ने एक लड़की को अपना बहन माना था, जिस लड़की का नाम था देवल नामक चारण देवी। देवल के पास एक बहुत सुंदर सी घोड़ी थी। घोड़ी अक्सर इस्तेमाल की जाती है बारात में ले जाने को, और उस घोड़ी का नाम था केसर कालवी। तो बाबूजी ने कहा कि मुझे ये घोड़ी दे दो ताकि मैं अपने बारात में लेकर के जाऊंगा। तब देवल जी ने कहा कि वो इन घोड़ियों की मदद से अपने गायों की रखवाली करती हैं। तो बाबूजी ने कहा कि तुम मुझे घोड़ी दे दो, तुम्हें जब कभी भी ज़रूरत होगी तो मैं बिना किसी समय देखे तुम्हारे पास लौट करके आऊँगा। और जब वो अपनी बारात लेकर के अमरकोट पहुंचे, तब उन्हें कहीं से खबर मिली आधे फेरे लेते हुए कि कोई जिंदा राव उनकी गायों को लेकर के भाग गया। और जैसे ही समाचार मिला, वैसे ही बाबूजी को अपना प्रॉमिस तो निभाना था, और इसीलिए बाबूजी ने अपने बीच में ही विवाह को छोड़ करके गायों के पीछे लग गए। वो गाय ले आने में तो समर्थ रहे, लेकिन वो खुद ही किसी खेत में रह गए, जिसकी वजह से उनका जो विवाह था वो पूरा नहीं हो पाया और इसीलिए जो उनकी पत्नी थी वो भी बाबूजी के साथ सती हो गई। तो बाबूजी की जो ये वीर गाथा है, यश गाथा है, उसमें उनका भी नाम जोड़ा जाता है और इसीलिए बाबूजी को एज अ लोक देवता उनकी पूजा की जाती है। तो यहाँ हमारा बाबूजी पर डिस्कशन भी फिनिश हो गया। चलिए देखते हैं कि हमारे अगले लोक देवता कौन है। तो पेज नंबर 71 पर ही एक लोक देवता का नाम लिखा है जो कि है रामदेव जी। इनके अंतर्गत लिखा है लोक देवताओं में रामदेव जी भी अधिक लोकप्रिय हैं। इनका जन्म 15वीं शताब्दी के अजमल जी और मेड़ा देवी के घर पोकरण के एक गांव में हुआ था। इनका विवाह नेतल देवी के साथ हुआ था। बाबा रामदेव जी सिद्ध संत, शूरवीर, चमत्कारी, कर्तव्य परायण, जनता के रक्षक और गौ रक्षक के रूप में प्रसिद्ध हुए। उन्होंने जाति व्यवस्था का विरोध करते हुए सामाजिक समरसता का संदेश दिया। रामदेव जी ने जीव मात्र के प्रति दया, गुरु महिमा, पुरुषार्थ एवं मानव के गौरव को महत्व दिया। वे समाज सुधारक भी थे। समाज में अछूत कहे जाने वाले वर्ग के साथ बैठकर भोजन करना, दलित डाली बाई का बहन के रूप में पोषण करना, धार्मिक आडंबरों का विरोध करना तथा हिंदू मुस्लिम एकता पर बल देना आदि रामदेव जी के प्रमुख कार्य थे। रामदेव जी ने गुरु की महत्ता पर जोर देते हुए कर्मों की शुद्धता पर बल दिया। ग्रामीण समाज में बाबा रामदेव गौ रक्षक, परोपकारी और लोकदेव के रूप में पूज्य हैं। राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश व गुजरात में भी इनकी पूजा की जाती है। ये सामाजिक सौहार्द के प्रतीक थे। अश्वारूढ़ बाबा रामदेव के एक हाथ में माला और दूसरे हाथ में तंदूरा शक्ति व भक्ति के प्रतीक हैं। इनके समाधि स्थल पर निर्मित मंदिर, राम सरोवर, पर्ड बावली, डालीबाई का समाधि स्थल मंदिर, पावन आदि स्मारक माने जाते हैं। विभिन्न गांवों में रामदेव जी के थान व मंदिर हैं। खेजड़ी वृक्ष के नीचे चबूतरे पर रामदेव जी के पगलिये स्थापित किए जाते हैं। मंदिरों को देवल या देवरा के नाम से जाना जाता है। बाबा रामदेव के नाम की शपथ भी ली जाती है जिसे रामदेव बाबा जी आर कहा जाता है। रात्रि में जम्मा जागरण किया जाता है तथा लोक गीत, काव्य, कथा से इनकी स्तुति की जाती है। इन्होंने विक्रम संवत 1515 1458 ईस्वी में समाधि ली थी। इनके समाधि स्थल रामदेवड़ा रुड़ेचा में प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल द्वितीय से दशमी तक विशाल मेला लगता है। आसपास के प्रदेशों से भी लोग मेले में आते हैं। तो अभी हमने जिन लोक देवता के बारे में रीड किया, शायद वो पूरे राजस्थान में या यूं कह ले कि राजस्थान के आसपास के इलाकों में भी सबसे फेवरेट यानी अत्यधिक लोकप्रिय लोक देवता हैं। इनका जन्म यानी ही वॉज बॉर्न इन 15th सेंचुरी, जो कि अजमल जी और मैड़ा देवी के घर में पोकरण गांव में हुआ था। बच्चों, पोकरण आज भी राजस्थान में है, जहां पर सबसे पहले मिसाइल्स और एटॉमिक बॉम्ब की टेस्टिंग वेस्टिंग हुई थी। और इसके ऊपर जॉन अब्राहम की एक बहुत अच्छी मूवी भी है, तो शायद यहाँ पर उसी पोकरण की बात की जा रही है। और यहाँ पर ये भी लिखा है कि इनका विवाह नेतल देवी के साथ हुआ था। जो ये बाबा रामदेव जी थे, वो कि एक प्रीस्ट थे, यानी संत थे, शूरवीर थे, कुछ जादुई चमत्कारी बाबा भी थे, कर्तव्य परायण, जनता के रक्षक, यानी जनता की रक्षा करने वाले थे। गाय इनकी बहुत फेवरेट थी, तो इनको हम कह सकते हैं कि काउस को भी प्रोटेक्शन देते थे। और ये मेनली इन्हीं सभी कामों की वजह से पॉपुलर थे। और इसके साथ साथ इन्होंने जाति व्यवस्था का विरोध किया, यानी जो कास्ट सिस्टम है, जिसके अंदर दो ऐसी कास्ट हैं जिनको बहुत ऊंचा दर्जा दिया गया है और दो ऐसी कास्ट हैं जिनको बहुत नीचे का दर्जा दिया गया है और जिनको इंसान नहीं समझ करके जानवरों के जैसा बिहेव किया जाता था उस टाइम पर, जिस टाइम पर रामदेव जी थे। और शायद इसी वजह से इन्होंने जाति व्यवस्था का, यानी कास्ट सिस्टम का विरोध किया है, यानी क्रिटिसाइज किया है, और सामाजिक समरसता का संदेश दिया, यानी सोशल इक्वालिटी का मोरल ये हमेशा से देते आए हैं। बच्चों, रामदेव जी को हम केवल दया, गुरु महिमा, पुरुषार्थ और इन सभी चीज़ों के लिए नहीं जानते हैं, बल्कि ये एक समाज सुधारक भी थे, यानी सोशल रिफॉर्मर भी थे। और सोशल रिफॉर्मेशन के फील्ड में उन्होंने बहुत सारे काम किए थे। इसका मतलब ये नहीं है कि वो केवल लेक्चर्स देते थे या फिर प्रीचिंग्स देते थे, वो खुद भी उसको प्रैक्टिस करते थे और तभी लोगों को समझाते थे कि उनको कैसे बिहेव करना चाहिए, किन ग्रुप्स के साथ। और इसीलिए वो अछूतों के साथ बैठ करके खाना खाते थे। अछूत इनका मतलब कि अनटचेबल्स, यानी कि हमारे एंशियंट सोसाइटी में ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स थे, ऐसी कम्युनिटीज थी, ऐसी कास्ट्स थी, जिनके साथ बैठ करके खाना, ऐसा माना जाता था कि खाने के बाद इंसान पल्यूटेड हो जाता है, या फिर उनके हाथ का कुछ छुआ हुआ खा लिया, पी लिया या कुछ इस्तेमाल कर लिया तो मानते थे कि वो इंसान दूषित हो जाता है। और इन्हीं सारी जो आडंबर्स थे, उनके अगेंस्ट रामदेव जी ने इन्हीं अनटचेबल कास्ट के साथ, कम्युनिटीज के साथ बैठ करके भोजन किया। इन्होंने एक दलित लड़की थी या विमेन थी, जिनका नाम था डाली बाई, उनको अपनी बहन माना था और इसीलिए वो उनका भरण पोषण भी करते थे, उनका ख्याल रखते थे। और इसी के साथ साथ उन्होंने ऐसे बहुत सारे धार्मिक आडंबरों का विरोध किया था। और हिंदू और मुस्लिम की जो एकता थी, यानी उस टाइम पर तो ये था कि मुस्लिम जो थे वो अटैकर्स माने जाते थे, यानी बाहर किसी देश से आए हुए हैं हमारे देश को लूटने के लिए। और इसीलिए हमारे देश में कई सारी ऐसी कम्युनिटीज थी जो कि मुस्लिमों को अपना दुश्मन मानती थी, लेकिन रामदेव जी ने ऐसे अपनी भाषण दिए, ऐसे लेक्चर्स दिए, लोगों को अपनी प्रीचिंग्स दी, जिसमें उन्होंने बताया कि हिंदू और मुस्लिम में एकता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें एक साथ ही रहना है। और इसके साथ साथ उन्होंने ऐसी बहुत सारी बातें बताई जो कि बहुत यूनिक थी, जैसे कि उन्होंने गुरु की महत्ता पर जोर दिया, यानी जो टीचर है, टीचर की क्या वैल्यू होती है, यानी टीचर हमारी लाइफ में कैसे चेंजेस लेकर के आता है, उसकी बात पर भी बहुत इम्पोर्टेंस दिया। इसके साथ साथ उन्होंने कर्मों की शुद्धता, यानी प्यूरिटी ऑफ बीट्स पर भी बहुत फोकस किया। प्योरिटी का मतलब शुद्धता और बीट्स को हम हिंदी में कर्म कहते हैं। और इसके साथ साथ गांव में जा करके बाबा रामदेव जी ने गौ रक्षा का काम किया, यानी काउस को प्रोटेक्शन दिया, जो काउ विजिलेंटिज्म होता था उसके अगेंस्ट आवाज उठाई, बहुत सारे परोपकारी काम किए, और इन्हीं सब कामों के चलते उनको लोक देव के रूप में पूजा जाता है। राजस्थान के अलावा इनकी पूजा मध्य प्रदेश, गुजरात में भी होती है। कहने का मतलब है कि अभी तक हमने जिन लोक देवताओं को देखा वो जनरली राजस्थान की किसी एक कम्युनिटी या किसी ट्राइब या किसी स्पेसिफिक प्लेस पर ही उनकी पूजा होती थी। लेकिन रामदेव जी की पूजा केवल राजस्थान में ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश में और गुजरात के भी कुछ इलाकों में इनकी पूजा की जाती थी, और इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये बाकी लोक देवताओं से ज्यादा पॉपुलर थे। तो ये बात हुई कि रामदेव जी ने क्या काम किया और वो क्यों लोक देवता की कैटेगरी में काउंट होते हैं, या फिर वो बाकी लोक देवताओं से कैसे डिफरेंट है। अब हम बात करेंगे रामदेव जी के कुछ स्पेसिफिक प्रतीकों को देखेंगे, साइन को देखेंगे कि उनको हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो बच्चों, इनका पूरा नाम है अश्वारूढ़ बाबा रामदेव, और अश्वारूढ़ बाबा रामदेव के दो हाथ हैं जैसा कि हम सभी के पास हैं, और इनके एक हाथ में आपको माला मिलेगी और दूसरे हाथ में आपको तंदूरा मिलेगा, और ये दोनों शक्ति और भक्ति यानी स्ट्रेंथ और डिवोशन का साइन है। इनके समाधि स्थल पर यानी वो स्थान, वो प्लेस जहां पर इनके मरने के बाद इनकी समाधि बनाई गई है, वहां पर इनकी समाधि के साथ साथ और भी बहुत सारी पावन, शुद्ध या इंग्लिश में बोले तो होली चीजों को एस्टैब्लिश किया गया है। और उन होली चीजों में कुछ टेम्पल्स आते हैं, यानी कि उसमें कुछ मंदिरों का निर्माण हुआ है, कुछ राम सरोवर आते हैं, सरोवर का मतलब जहां पर फ्रेश पानी बहता है, लोग पानी पी सकते हैं विदाउट एनी डिफरेंशिएशन ऑफ कास्ट, इसको हम सरोवर कहते हैं। पर्ड बावड़ियों का एस्टेब्लिशमेंट हुआ है, बावड़ी का मतलब आप सभी जानते हैं बाग या बगीचे, और उन्हीं के समाधि पर डाली बाई की समाधि भी बनाई गई है। तो आप समझ सकते हैं कि इनकी समाधि को कितने बढ़िया तरीके से रचा गया है, बनाया गया है। जैसे ये खुद एकदम शुद्ध थे, प्योर थे, वैसे ही इनकी समाधि को पावन बनाया गया है। और इस पैराग्राफ में ये भी लिखा हुआ है कि बाबा रामदेव या रामदेव बाबा, जो भी आप कह लीजिए, इनके नाम की एक शपथ ली जाती है। शपथ यानी कि प्लेज, जैसे हम अपने स्कूल में प्लेज लेते हैं कि हम सभी भारतीय भाई बहन हैं, वैसे ही इनके प्लेज को, इनकी जो नाम की शपथ होती है, इसको हम एक स्पेसिफिक नाम से जानते हैं जो कि है रामदेव बाबा री आड़। तो ये याद रखिएगा कि इनके शपथ का नाम क्या है, वो है रामदेव बाबा री आड़। और रात्रि में यहाँ पर यानी नाइट में अक्सर एक ऐसा ओकेजन आता है जब जम्मा जागरण किया जाता है। अगर आपको नहीं पता कि जम्मा जागरण क्या होता है तो इसमें कोई कंफ्यूज होने की बात नहीं है, क्योंकि हम हमेशा देखते आते हैं कि किसी न किसी के घर पे दुर्गा माता का जागरण होता है या फिर किसी अन्य देवता का जागरण होता है, और शायद वहीं से यहाँ पर ये लोक देवताओं के नाम पर जागरण कराने का भी जो फैशन है निकल करके आया होगा। तो हमने देखा कि कैसे रामदेव बाबा का जागरण होता है। हो सकता है कि आपके किसी के घर में ये जागरण खुद भी होता हो, तो खैर मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आपको इसके बारे में कोई भी एक्स्ट्रा नॉलेज है तो आप शेयर जरूर करिएगा। इनके नाम पर बहुत सारे लोक गीतों का भी निर्माण हुआ है और बहुत सारे गीत कविताएं भी गाई जाती हैं, जिसको हम गीत और काव्य कहते हैं। और इन्होंने समाधि कब ली, तो इन्होंने समाधि लगभग विक्रम संहिता के अनुसार 1515 में ली। यानी अगर हम ग्रिगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग देखें तो 1458 में इन्होंने समाधि ली थी। तो बच्चों, ये हुआ हमारा डिस्कशन एक छोटा मोटा रामदेव जी पर। और हमने देखा जैसे कि सभी लोग देवताओं के नाम पर, स्थान पर, समाधियों पर मेला लगता है, तो यहाँ पर भी भाद्रपद शुक्ल द्वितीय से दशमी तक एक बहुत बड़ा मेला लगता है। क्या आप सभी कभी उस मेले में गए हैं? अगर गए हो उस मेले में, तो जरूर नोट करिएगा कि उस मेले की क्या खासियत है, वहां पर किसकी पूजा होती है या कौन सी यूनिक चीजें वहां पर मिलती हैं और किस लिए वो मेला प्रसिद्ध है। और बच्चों, इसी के साथ आज की हमारी ये क्लास यहीं पर दी एंड होती है, समाप्त होती है। अगली क्लास में हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।